Yesterday, for the last 2 days, we've been talking about gospel truth.
कल और पिछले दो दिन से हम लोग सुसमाचार पर आधारित सत्यों के बारे में बात कर रहे हैं.
What is the gospel?
सुसमाचार क्या है?
What is man's condition?
मनुष्य की स्थिति क्या है?
What is true salvation?
सच्चा उद्धार क्या है?
What is the order of salvation?
उद्धार का क्रम क्या है?
You must be very clear on these truths.
आपको इन सत्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए.
Today we're talking more about sanctification and the Christian life.
और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक मसीही जीवन और उससे संबंधित पवित्रीकरण के बारे में.
We want to try to answer these questions.
हम इन प्रश्नों के बारे में उत्तर देना चाहते हैं.
These are very important subjects you need to be clear on.
और ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आपको और स्पष्ट होना है.
What is sanctification?
पवित्रीकरण क्या है?
What does it mean to be in Jesus Christ?
यीशु मसीह में होने का मतलब क्या है?
What is the ministry of the Holy Spirit in the life of the believer?
एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की सेविकाई क्या है?
What is the believer's relationship to the law of God?
और एक विश्वासी के जीवन में व्यवस्था का संबंध क्या है?
What is true gospel obedience?
सच्चा सुसमाचार की आज्ञाकारिता क्या है?
Now this is very simple but very important.
ये सब बड़ा ही साधारण बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है.
And we need to review these things briefly again.
हमें इन बातों को फिर से दोहराना पड़ेगा.
Because you must clearly preach these things to the people of God.
क्योंकि आपको इन्हें स्पष्टता के साथ परमेश्वर के लोगों को बताना होगा.
What does it mean to be sanctified?
पवित्र होने का मतलब क्या हो गया?
What does it mean to be in Jesus Christ?
यीशु मसीह में होने का मतलब क्या हो गया?
What is the ministry of the Holy Spirit in our life?
पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में सेविकाई का मतलब क्या
हो गया? What is our relationship to the commandments of God?
परमेश्वर की आज्ञाओं से हमारा
What
क्या
is the difference between gospel obedience and legal obedience?
सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता और वैधानिक आज्ञाकारिता में फर्क क्या है?
Now we're going to try to cover those things again today.
और उन बातों को आज हम देखना चाहेंगे.
We've been talking about what is sanctification.
हम बात कर रहे हैं पवित्रकरण क्या है.
So the New Testament talks about sanctification in three ways.
हमने बात किया कि नया नियम पवित्रीकरण के बारे में तीन तरह से बात करता है.
Positional sanctification.
हमारी स्थिति या अवस्था.
That happens when we are converted.
जब हम हृदय परिवर्तन तब की बात है.
Progressive sanctification.
प्रगतिमान पवित्रीकरण.
That happens from the new birth until death.
और ये होता है नए जन्म में जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती है.
It is a process of growth.
और ये वृद्धि की प्रक्रिया है.
The goal is the image of Jesus Christ.
और लक्ष्य है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं.
And it is characterized by both putting off the old man and putting on the new man.
और इसमें हम लोग पुराने मनुष्यत्व को उतारते हैं और नए मनुष्यत्व को चढ़ाते हैं.
Again, look in the book of Ephesians.
और इफिसियों की पत्री में देख लीजिए.
We're talking about our own personal growth in Christ.
और यहाँ पे बात हो रही है हम लोग व्यक्तिगत वृद्धि आपने वृद्धि मसीह में.
You must be able to teach this clearly and plainly to the people of God.
और हमें इसको स्पष्टता के साथ सफाई के साथ परमेश्वर के लोगों के पास सिखाने की क्षमता होनी चाहिए.
Ephesians in chapter 4.
इफिसियों का चौथा अध्याय.
Very familiar verse.
अपने बहुत ही जाना पहचाना पद है.
Verse 22.
22 पद.
That in reference to your old manner of life you lay aside the old self which continues to be corrupt according to the lust of deceit.
और यहाँ पे जो भी पुराने नियम के पुराने शरीर के अनुसार बातों को हमें उतारते जाना हटाते जाना है.
Verse 23, and that you be renewed in the spirit of your mind.
और 23 पद में यहाँ पे लिखा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ.
It's the understanding of truth in the mind.
और ये हमारे मन में जो समझ है उसको समझना है.
The power of the Holy Spirit in the heart and life.
और हृदय और जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ.
Verse 24,
24 पद.
That enables us to put on the new self.
और ये हमें मदद करता है कि हम नए मनुष्यत्व को डाल लें अपने ऊपर.
And what is the characteristic of the new self?
और जो नया मनुष्यत्व है उसका चरित्र क्या होता है?
It is created in righteousness and holiness of the truth.
वो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है.
So Paul says we are to lay aside and to fight against our old remaining indwelling sin.
तो पौलुस कहता है कि हमें जो बाकी जो बच गया है हमारे अंदर रह गया जो पुराना मनुष्यत्व है उससे हमें लड़ना है उसको हटाना है हमें.
Look in the book of Colossians.
और कुलुसियों की पत्री में
Colossians and chapter 3.
कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय.
Verse 5.
उसके पांचवा पद.
I consider the members of your earthly body as dead to sin.
अपने पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो.
Verse 7. In them you once walked when you were living in them.
और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे.
Verse 8. Now put them all aside.
आठवें पद में अब तुम इनको अलग कर दो.
Verse 9.
नवा पद.
Don't lie to one another since you've laid aside the old self.
एक दूसरे झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके बुरे कार्य से
And put on the new self.
दसवां पद नए मनुष्य को पहन लिया है.
And what and how is it renewed?
और वो कैसे नया होता है?
To a true knowledge according to the image of the one who created him.
और उसके अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य प्राप्त करने के लिए नया बदला.
God wants us to continue to grow into the image of Jesus Christ.
परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनते चले जाएं.
To fight against remaining sin.
जो बचा हुआ पाप है उसके विरोध लड़ने के लिए.
And to put on the new man.
और एक नया मनुष्य तो डालने के लिए.
I ask you this question before.
मैं आपसे ये प्रश्न पहले पूछ चुका हूं.
If I ask you to write down what you consider the three main weaknesses and tendencies of your remaining sin in your own life, what would they be?
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जीवन में बचे हुए तीन पुराने मनुष्यत्व की बातों को बताएंगे तो आप क्या बताएंगे मुझको? अगर मैं आपसे कहूं तीन बातें हैं आपके जीवन में, शरीर में बच्चा हुआ शरीर का प्रभाव या मनुष्य तो है, तीन बातें तो आप क्या बताएंगे?
We all have remaining and dwelling sin.
तो हम सब के अंदर बच्चा हुआ पाप का प्रभाव है जो अभी भी विद्यमान है.
But in our own individual lives and our different lives, its expression may be different as to its weaknesses and tendencies.
लेकिन हम सब के जीवन में यद्यपि हम सबके अंदर पाप है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति प्रगटीकरण हम लोग के अलग अलग जीवन में अलग अलग होगा.
One man struggles especially against pride or insecurity.
तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक जन है वो विशेष तौर से घमंड से और असुरक्षा की भावना से संघर्ष करता है.
One man struggles especially with lust and a lack of self-control.
और ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है जो वासना के मामले में, कामुकता के मामले में और अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता उन मामले में. तो अलग अलग लोग अलग अलग पाप के बचे हुए प्रभाव और शरीर के प्रभाव से लड़ते हैं, उनकी अभिव्यक्ति अलग 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 लोगों में भिन्नता दिखाई देती है.
Struggle with anger and a bitter spirit.
और कुछ लोग हो सकते हैं उनके अंदर क्रोध हो सकता है या कड़वी आत्मा हो सकती है, कड़वाहट दूसरों के प्रति हो सकती है.
He may be insensitive and have no compassion.
और हो सकता है अगला व्यक्ति ऐसा हो जो असंवेदनशील हो और उसके अंदर कोई दया नाम की चीज ना हो.
Another man may especially struggle with laziness and a lack of discipline.
और हो सकता है कोई ऐसा भी आदमी हो जो आलस से संघर्ष करता हो और उसके अंदर अनुशासन नहीं पाया जाता हो.
And if you're going to grow, you must know your own peculiar weaknesses and tendencies.
और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपके अपनी स्वयं की कमजोरियों को और विशेष समस्याओं को आपको मालूम होना चाहिए.
And so sanctification is the process of gradually putting off our old sinful tendencies and being conformed to the image of Jesus Christ.
तो पवित्रीकरण यह है कि हमें अपने स्वयं के पाप को समझना और फिर यीशु मसीह के समानतम बनते चले जाना.
Have you ever asked yourself that question?
क्या आपने अपने आप से यह कभी प्रश्न पूछा है?
Do you know yourself?
क्या आप अपने आप को जानते
हैं? Are you aware of your weaknesses?
क्या आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं?
Many preachers.
बहुत सारे प्रचारक.
They don't think about the condition of their heart.
वो अपने हम लोग अपने स्वयं के हृदयों के बारे में नहीं
सोचते about their ministry.
तो हम लोग केवल सेविकाई के बारे में सोचते
हैं.
केवल हम अपने प्रचार के बारे में सोचते
हैं.
केवल हम अपनी कलीसिया के बारे में सोचते हैं. केवल अपने पैसे के बारे में सोचते हैं.
They think about their reputation.
केवल अपने नाम के बारे में सोचते
हैं. But they think about outward things.
ये केवल बाहरी चीजों के बारे में सोचते हैं.
But a holy man is concerned about true inward purity.
वो वास्तविक भीतरी पवित्रता शुद्धता के बारे में सोचता है.
A pure heart.
एक शुद्ध हृदय.
A good conscience.
एक अच्छा विवेक.
And a sincere faith.
एक सिद्ध अच्छा विश्वास.
And he knows his own sinful tendencies.
और वो खुद की पाप में विचारधारा को जानता है, प्रवृत्ति को जानता है.
And he prays against them.
और फिर वो अपनी पापी प्रवृत्तियों के विरोध में प्रार्थना करता है.
The word of God against them.
और फिर उनके विरोध में उनके लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है.
And he asks for the power of the Spirit of God to overcome them.
और फिर परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करता है कि वो इन चीजों पे जय पा सके, विजयी हो सके.
And if you want the people you preach to grow, you yourself must be growing also.
अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीजों में बढ़ें तो आपको स्वयं अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग इन बातों में बढ़ें तो आपको स्वयं भी इन बातों में बढ़ना होगा.
And the New Testament talks about sanctification in a third way.
और नया नियम पवित्रीकरण के बारे में एक और तरीके से बात करता है, तीसरी तरीके से बात करता
है. And what is that third way?
और वो तीसरी बात क्या है?
Final or complete?
अंतिम
or perfect?
सिद्ध, पूर्ण. सिद्ध, पूर्ण, अंतिम, अंततः.
And when does this happen?
और ये क्या हुआ? ये कब होता है? ऐसे कब हुआ ये? कब होता है?
Wrong.
जब एक आदमी मर जाता है.
Do you say when men die?
Yeah, when men die. हाँ, बूढ़ा होता है? पूरा पूरा कब होता है? When the Lord comes back.
Oh, yeah. Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
When a man dies,
जब एक आदमी मर जाता है,
he is freed from the body of sin.
वो पाप के शरीर से मुक्त हो जाता है.
And his soul is separated from his body.
और उसका प्राण उसके शरीर से अलग हो जाता है.
Paul said he's absent from the body but present with the Lord. Absent from the body, present with the Lord.
तो वो शरीर से तो अलग है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में है.
Paul said it's better to die and to depart and to be with Christ.
तो कहता है कि पौलुस कहता है बेहतर है कि एक व्यक्ति के लिए मेरे लिए मरना और मसीह के सामने होना, उपस्थिति प्रभु के सामने उपस्थिति होना.
Jesus said to the thief on the cross, "Today you will be with me in paradise."
आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे.
But listen carefully. That is not complete redemption.
वो संपूर्ण छुटकारा नहीं है.
That is not final sanctification.
वो अंततः अंतिम पवित्रीकरण अभी भी नहीं है.
Because you've been bought with a price.
क्योंकि आपको एक कीमत देके छुड़ाया गया है.
Not just your soul.
खाली आपका प्राण नहीं.
But also your body.
लेकिन आपका देह भी.
It belongs to God.
वो परमेश्वर का है.
Christ shed his blood to redeem your body also.
परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया आपके शरीर को भी छुड़ाने के लिए.
And he rose from the dead.
और वो मृतकों में से जी उठा.
And that tells us because we are in him, one day we too will rise from the dead.
तो एक दिन क्योंकि हम उसमें हैं, एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठेंगे.
And final and complete sanctification happens at the return of the Lord.
और अंतिम और आखिरी पवित्रीकरण तब होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे.
And your body will be joined together with your soul, and body and soul you will be perfectly sanctified forever.
और आपका आत्मा आपके शरीर से मिला दी जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके आत्मा और आपके शरीर सिद्धता के साथ पवित्र हो चुके होंगे.
Write this verse down.
इस बात को इस पद को लिखे.
First Thessalonians.
पहला थिस्सलुनीकियों.
And chapter 5. Is that right? And verse 23.
5. 5:23.
This is Paul's prayer.
ये है पौलुस की प्रार्थना.
Now may the God of peace himself sanctify you entirely.
आप शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णता पवित्र करें.
And may your spirit, soul, and body be preserved complete without blame at the coming of the Lord Jesus Christ.
और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी तरह से निर्दोष और सुरक्षित रहे.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Is man made up of three parts or made up of two parts?
एक आदमी तीन हिस्से का बना होता है कि दो हिस्से का बना होता है? तीन.
The Bible speaks of man as material and physical or inward and immaterial.
Bible baat karti hai sharir ki bhautik aur sharirik baat karti hai aur aatmik aur jisko nahi chua ja sakta uski baat karti hai.
And when it talks about man's immaterial and non-physical part, it often uses different words to describe that.
तो जब हम बाइबल बात करती है मनुष्य के गैर शारीरिक जिसको ना छुए जाने वाले हिस्से के बारे में बात करती है तो उसके बारे में कई शब्दों को इस्तेमाल करती है उस हिस्से के बारे में बताने के लिए.
The Bible describes the inward part of man, it uses different words.
और जब भीतरी हिस्से की बात करती है, भीतरे मनुष्यत्व की बात करती है, तो बाइबल अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करती है.
Talks about the mind.
मन की बात
talks about the heart.
हृदय की बात
talks about the will.
इच्छा की बात
talks about the conscience.
विवेक की बात
sometimes it calls it the talks about the spirit.
कभी कभी आत्मा की बात
it talks about the soul.
प्राण की बात करती
है. Now listen carefully.
ध्यान से बात करो.
Men differ on this particular point.
इस विषय पे लोग अलग-अलग विचार हैं.
But what you need to understand is this.
आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि
man is basically material and immaterial.
वास्तव में मनुष्य मुख्यतः दो हिस्सों में भौतिक और गैर भौतिक
and the bible describes the immaterial part with different words
और जो गैर भौतिक हिस्सा है उसको बाइबल अलग-अलग शब्दों से वर्णन करती है
and the bible says that when christ returns
और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वापस आएंगे
that our entire existence body and soul will be entirely sanctified complete
तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व शरीर और देह और आत्मा संपूर्णता से शुद्ध पवित्र हो चुका होगा
Look in the little book of Jude.
और यहूदा की छोटी पत्री में देखिए जो आखिर में पाई जाती है
Right before the book of Revelation.
प्रकाशित वाक से तुरंत पहले यहूदा की पत्री देखिए
This is Jude's closing prayer.
और ये है यहूदा की आखिरी अंतिम प्रार्थना
वर्स 24
24 पद
लुक एट जूड 24
यहूदा उसका 24 पद देखिए
नाउ टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग मेक यू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ हिज गॉड ब्लेमलेस विद ग्रेट जॉय
अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और अनंत कर खड़ा हो सकता है
He's talking about our final sanctification.
वो बात कर रहा हमारे अंतिम अंतता अंतिम आखिरी धर्मी पवित्रीकरण के बारे में
Now let me ask you a question.
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ
I've asked you this before.
मैं आपसे पूछ चुका हूँ ये पहले
Is heaven the final destination for the Christian?
क्या स्वर्ग मनुष्यों के लिए अंतिम गंतव्य है
Some say yes, some say no.
कुछ लोग कह रहे हाँ कुछ लोग कह रहे नहीं
Listen carefully.
ध्यान सुनिएगा जो आपने उसको उत्तर दिया था आप लगभग सही थे दिशा में जा रहे थे सही दिशा में जा रहे थे
Heaven is not the final destination for the Christian.
जो मसीही लोग हैं विश्वासी लोग हैं उनके लिए स्वर्ग अंतिम गंतव्य नहीं है समझ रहे इस बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे स्वर्ग हमारे लिए अंतिम गंतव्य नहीं है
Hell is not the final destination for the non-Christian.
और जो गैर विश्वासी लोग हैं उनके लिए नरक अंतिम गंतव्य नहीं है
What's the final destination for the Christian?
विश्वासियों के लिए अंतिम गंतव्य क्या है हाँ? विश्वासियों के लिए अंतिम गंतव्य क्या है तुमने क्या बोला है न्यू क्रिएशन न्यू हेवन
द न्यू हेवन्स एंड द न्यू अर्थ
नई सृष्टि में नया स्वर्ग और नई पृथ्वी
नाउ देयर हैव बीन थ्री वर्ल्ड्स
तीन दुनिया है
द वर्ल्ड दैट वंस वाज
एक दुनिया जो थी पहले
इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वाटर
जिसको पानी के द्वारा नाश कर
दिया गया द वर्ल्ड दैट नाउ इज
अब एक दुनिया जो अब है
इट इज प्रिजर्व्ड बाय गॉड
ये प्रभु के द्वारा बचाई हुई है
एंड द वर्ल्ड दैट शैल बी
और एक दुनिया जो आएगी
दैट इज द वर्ल्ड दैट गॉड विल रीक्रिएट
और वो दुनिया जिसको प्रभु दोबारा बनाएंगे
एंड बॉडी एंड सोल वी विल ड्वेल टुगेदर विद द लिविंग क्राइस्ट विद द न्यू हेवंस एंड अ न्यू अर्थ
और हमारा शरीर और देह और आत्मा मसीह के साथ नई सृष्टि नई पृथ्वी पे हमेशा के लिए रहेगी
Do you understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं
Peter says, I will, Jesus said, I will create a new, Peter says that there will be a new heavens and a new earth.
पत्रस कहता है कि एक नया स्वर्ग होगा नया पृथ्वी होगी
Look in 2 Peter.
दूसरे पत्रस
देखिए. We're talking about final sanctification.
अंतिम पवित्रीकरण के बारे में बात करें हम लोग
It includes the renewal of the whole earth, the whole world, the heavens and the earth.
यहाँ पे बात हो रही है संपूर्ण सृष्टि का नया बनाया जाना
All the earth now groans anxiously awaiting the revelation of the sons of God.
और संपूर्ण सृष्टि आहें भरती है पर मनुष्यों के पुत्रों के प्रकट होने के लिए.
Now we do not appear to be the children of God.
हम अभी तो परमेश्वर की संतान नहीं प्रकट होते हैं.
But we know that when he comes, we shall be like him because we shall see him as he truly is.
लेकिन हम जानते हैं कि जब वो आएगा तब हम उसके समान होंगे क्योंकि हम उसको वास्तव में देखेंगे जैसा वो है.
Why are there earthquakes?
क्यों भूकंप आते
हैं? Why are there storms?
क्यों तूफान आते हैं?
Why is the earth in turmoil?
क्यों ये पृथ्वी इतने उथल-पुथल में है?
Sin has affected and touched not just man, but it has touched and contaminated the entire earth.
और पाप ने ना सिर्फ मनुष्य को को प्रदूषित किया है लेकिन पाप ने संपूर्ण पृथ्वी को दुनिया को प्रदूषित किया है.
Why do animals eat other animals?
क्यों एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेते हैं?
Why do dogs fight with each other?
क्यों एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ता है?
Because the earth has been affected by sin.
क्योंकि जो पृथ्वी है पाप के द्वारा प्रदूषित हुई है.
And in the new heavens and the new earth, it says the lion will lay down with the lamb.
और नए सृष्टि में लिखा है कि सिंह के साथ एक मेमना साथ में बैठेंगे.
And the little child will put his hand upon the serpent.
और एक छोटा बच्चा सांप के बिल में अपना हाथ डालेगा.
God will make a new heavens and a new earth.
परमेश्वर एक नई सृष्टि और नई पृथ्वी का निर्माण करेगा.
There will be no more war.
फिर युद्ध नहीं होंगे.
There will be no more death.
फिर मृत्यु नहीं होगी.
There will be no more tears.
फिर रोना नहीं होगा.
There will be no more sin.
फिर कोई पाप नहीं होगा.
There will be no more corruption.
फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा.
Why do trees die?
क्यों पेड़ मर जाते?
Why do animals die?
क्यों जानवर मर जाते?
Because the earth has also been corrupted and polluted.
क्योंकि ये पृथ्वी प्रदूषित हो चुकी है और भ्रष्ट हो चुकी
है. But God is going to make a new heavens and a new earth.
लेकिन परमेश्वर एक नई पृथ्वी और नई स्वर्ग बनाएगा.
And if you are a Christian,
और यदि आप मसीह हैं,
your soul and your body will be reunited and will dwell forever in a new heavens and a new earth.
आपका प्राण और आपकी आत्मा और आपका देह जुड़ जाएंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए नई पृथ्वी और नई सृष्टि पर रहेंगे.
Second Peter,
दूसरा पत्रस,
chapter
3,
notice what he says, verse 10, the day of the Lord will come like a thief,
प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा,
and the heavens and the earth will pass away like a roar, and all that is in it will be burned up.
जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे.
Verse 12.
बारह पर.
We are looking and hastening the coming of the day of God.
तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए?
The heavens will be destroyed and the elements will melt with intense heat.
उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे.
Verse 13.
तेरह पद.
We want to go to heaven.
हम जाना चाहते हैं स्वर्ग.
When we die, we will go to heaven.
और जब हम मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे.
But we are looking, verse 13, according to his promise, to a new heavens and a new earth in which righteousness dwells.
लेकिन तेरा पद के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है.
And if you understand this,
और यदि आप इसको समझ जाएंगे,
not just write it in your notebook,
केवल अपनी किताबों में,
but you understand it in your mind,
लेकिन अपने मस्तिष्क में समझ जाएंगे,
believe it in your heart,
अपने हृदय से विश्वास
करेंगे, and you think about it every day,
और इसके बारे में प्रतिदिन सोचेंगे,
and it is your hope and expectation.
ये आपकी आशा
it will have an influence on how you live now.
तो फिर ये प्रभाव डालेगा कि आप इस समय कैसे जिएंगे.
Verse 14.
14 पर.
Therefore.
इसलिए.
Since you look for these things, be diligent to be found in him in peace, spotless and blameless.
जब तुम इन बातों की आस लगाए हो प्रार्थना करो कि तुम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ.
And when a preacher looks toward the world to come.
और जब ये प्रचारक आने वाली दुनिया की ओर देखता है,
he will seek and labor to keep himself pure.
तो वो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा कि अपने आप को पवित्र और शुद्ध रख सके.
That is final and perfect sanctification.
ये है अंतिम और सिद्ध.
Jesus Christ has a glorified human body in heaven.
यीशु मसीह के पास एक महिमान्वित शरीर है स्वर्ग में.
The second person of the Godhead took something with him to heaven that he did not previously have.
त्रिएक परमेश्वर के द्वितीय परमेश्वर ने द्वितीय जन ने अपने साथ एक ऐसी चीज लेके गए स्वर्ग में जो उनके पास पहले नहीं उपस्थित थी.
And what was that?
और क्या चीज थी ये त्रिएक परमेश्वर के दूसरे जन ने ऐसी कौन सी चीज अपने साथ स्वर्ग लेके गए जो पहले उनके पास नहीं थी? हाँ जी
That's true.
आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं.
But what he's taking to heaven is a body.
लेकिन जो वो स्वर्ग में लेके जा रहे हैं.
And that body was raised from the dead.
वो अपने साथ एक शरीर को लेके आ रहे हैं, देह को ले जा रहे हैं.
And now it is glorified.
वो देह पुनरुत्थानित देह है और वो महिमान में है. और इससे पहले वो पृथ्वी पर आए थे.
Before he came to earth.
इससे पहले वो जमीन पर आए.
He did not have that body.
उनके पास वो देह नहीं थी.
The second person of the Godhead.
और परमेश्वरत का द्वितीय जन के पास.
The eternal son of God.
अनंत काल का पुत्र.
He is called the Word.
अनंत काल परमेश्वर का पुत्र.
What did he say?
उसने क्या कहा?
When he stood upon the threshold of heaven.
जब वो स्वर्ग के द्वार पे खड़ा था.
And he was about to come to the earth.
जब वो पृथ्वी पे आने वाला था.
And in the mystery of the union, he was to inhabit the womb of Mary.
और वो इस समागम के रहस्य को जो मरियम के द्वारा वो लाने वाला था.
What did he say?
क्या कहा उसने?
What words does the writer of Hebrews put into his mouth?
इब्राहिमियों के लेखक ने कौन से शब्द उसके मुख में डाल दिए?
When the firstborn comes into the world, this is what he says.
जब वो इकलौता पहलौठा इस दुनिया में आएगा तो उसने ये कहा.
And burn offerings for sin thou hast not desired.
उसमें ये क्या इब्राहिमियों के लेखक कहता है कि बलिदान और बलिदान तुमने नहीं चाहा
है. But a body you have prepared for me.
लेकिन एक देह तूने हमारे लिए तैयार की है.
And lo, I say in the book of the scroll it is written of me, I delight to do your will, O God, your law is in my heart.
और जो तुम चाहते हो, जो देह तुमने दी है और इसके द्वारा तुम अपनी महिमा करना चाहते हो, ये मुझे प्रसन्न है करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए.
God gave him a body.
परमेश्वर ने उसको एक देह दिया है.
And in that body he bore our sin.
और उस देह में परमेश्वर ने जो यीशु मसीह दिया था उसमें उसने हमारे पापों को सह लिया.
According to the scriptures.
वचन के अनुसार.
And he died.
जब वो मर गया.
According to the scriptures.
वचन के अनुसार जब वो मर गया.
And he was raised from the dead.
वो मृतकों में से जिलाया गया.
And body was raised.
और वो देह जिलाई गई.
Now in heaven.
अब एक स्वर्ग.
There is a glorified body.
एक महिमान्वित शरीर है.
And because you are in Christ.
क्योंकि आप मसीह में हैं.
And because he shed his blood to purchase your body and your soul.
क्योंकि उन्होंने अपना खून बहाया आपकी देह और आपके प्राण को बचाने के लिए.
Your body will be raised from the dead.
इसीलिए आपका देह भी एक दिन जलाया जाएगा मृतकों में से.
The Hindu.
हिंदू लोग.
And the Buddhist.
और बौद्धिस्ट लोग.
Seek to live forever.
वो लोग हमेशा तक जीना चाहते हैं.
But only the Christian.
लेकिन केवल मसीह लोग हैं.
And the new heavens and the new earth.
नए स्वर्ग में और नए पृथ्वी में.
Will live blamelessly.
निर्दोषता के साथ जिएंगे.
Is hell the final destination for lost men?
जो मरे हुए लोग हैं उन लोग के लिए क्या नरक अंतिम, जो खोए हुए लोग हैं उनके लिए नरक अंतिम स्थान है क्या?
What's the final destination of all lost men?
जो सब लोग खोए हुए लोग हैं उनके लिए अंतिम गंतव्य क्या है? हाँ जी, नहीं नहीं, जो खोए हुए लोग हैं, जो लोग पापी लोग हैं. The lake of fire. आग की झील.
And death will give up its dead.
और जो मृत्यु है अपने मृत्यु
and the sea will give up its dead.
और जो समुद्र है वो मरे को छोड़
देगा. And hell will give up its dead.
और जो नरक है वो मरे को छोड़ देगा.
And they will be bound together and cast body and soul into the lake of fire.
और उनको शरीर और आत्मा के साथ उस आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा.
But for the child of God.
लेकिन परमेश्वर की संतान के लिए.
He will live forever.
वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा.
In a new body.
एक नए शरीर में.
And a new heavens and a new earth.
और एक नए पृथ्वी और नए स्वर्ग में.
And he shall see him.
और वो उसको देखेगा वहाँ पे.
But those that are not Christians.
और जो लोग मसीह लोग नहीं हैं.
Will live forever.
वो हमेशा तक जिएंगे.
In the lake of fire.
वो लोग अग्नि की झील में.
And they will be tormented forever and ever.
उनको हमेशा हमेशा के लिए प्रताड़ित किया जाएगा.
Because God is a righteous God.
क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है.
And if you're a child of God,
अगर आप परमेश्वर के संतान हैं,
you'll be sanctified entirely.
तो आप हमेशा संपूर्णता के साथ आपका पवित्रीकरण हो जाएगा एक दिन.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपके सामने?
What is the difference between a common man who is a type, if he dies, goes to the hell, and a Satan who is in the form of Satan? What is the final result of his future or his body?
The second person was who? Satan, he said?
Yeah. Shaitan kaun? Pehla to ho gaya anny jati log jo prabhu ke aate
hain.
ठीक है, नरक जाएंगे. ठीक ठीक. शैतान जो
बहुत सताता है लोगों को, बहुत मारता है,
दुष्ट.
हाँ
ठीक है.
उसका क्या?
अच्छा ठीक है.
उसमें क्या फर्क है उनके अंतिम प्रक्रिया?
डेविल, बेसिकली डेविल. व्हाट विल हैपन टू द डेविल? व्हाट विल हैपन टू नॉन क्रिश्चियन?
हु विल बी इन द लेक ऑफ फायर?
आग की झील में कौन कौन होगा अंत में?
Jesus said the lake of fire has been prepared for the devil and his angels.
यीशु मसीह कहते हैं कि आग की झील को शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया.
So the devil and his angels will be cast into the lake of fire.
तो शैतान और उसके स्वर्गदूतों को आग की झील में डाला जाएगा.
And all children of the devil will be cast into the lake of fire with him as well.
और शैतान के सारे संतानों को भी आग की झील में डाला जाएगा.
So they all have the same final destination.
तो चाहे वो गैर विश्वासी हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे शैतान के स्वर्गदूत हो, गैर विश्वासी सब लोग आग की झील में डालेंगे अंततः, अंतिम तौर पर, हमेशा हमेशा के लिए. एक ही जगह जाएंगे, कोई दूसरी जगह नहीं है.
Where does Jesus say that?
यीशु मसीह क्या कहते हैं ये बात? कहां पे कहते हैं ये?
You need to know those verses. Jesus said it, and it also says it in the book of Revelation.
प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है और यीशु मसीह भी कहते हैं सुसमाचार में.
Any other questions?
कोई और प्रश्न? हाँ जी. क्योंकि कहीं और लिखा नहीं बाइबल में उसके बारे में. हाउ कैन वी नो फॉर श्योर दैट देयर वाज नो देयर इज नो बॉडी इन हेवन बिफोर जीसस वेंट बैक?
देयर आर सेवरल बॉडीज इन हेवन.
बहुत सारे देह हैं, शरीर, बहुत सारे देह हैं स्वर्ग में.
राइट नाउ,
अभी इस समय.
व्हाट बॉडीज आर दे?
कौन से देह हैं वो?
जीसस बॉडी,
यीशु मसीह की देह.
हु एल्स? Who?
Noah.
Who?
Noah. Somebody said Noah. Enoch.
Enoch.
Enoch. Elijah.
Elijah.
Musa. Abraham.
Abraham died and was buried, the Bible says.
Bible बताती है कि Abraham मर गया था और उसको दफना दिया था.
Moses died and was buried.
Musa mar gaya to usko dafna diya tha. Anje? Elijah? Melchizedek? Upar bhi chale gaye wo log.
Who appeared with Jesus on the Mount of Transfiguration?
Yeshu Masih ke saath rupantar ke parvat pe kaun aaya tha? अब्राहम कहां से आ गया था अंकल जी? Moses and Elijah.
Elijah did not die. Moses did die. How could Moses be there?
Elijah नहीं मरा था, मूसा मर गया था, तो मूसा कैसे आ सकता था वहां पे?
What did those two men represent?
वो दोनों व्यक्तियों ने किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे?
You think about that for a while and you can tell me later.
आप लोग सोचिए इसके बारे में, फिर बाद में बताइएगा मुझको.
Any other question?
कोई और प्रश्न? भाई हमको नहीं मालूम. हाँ जी. अच्छा साइंस. तीन तीन हिस्से. दो नहीं तीन ही से. पहला पहले ओ नहीं, वो दूसरा प्रोग्रेस है, प्रगतिशील प्रगतिमान सैंक्टिफिकेशन के दो हिस्से हैं, पाप को मारना और यीशु मसीह के समानतम बनना. तो कुछ उतारना है, पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, नए मनुष्यत्व को चढ़ाना है. पुराने शरीर को पाप को हटाना है और यीशु मसीह के जैसे बनते जाना है.
Now the book of Jude says,
यहूदा की पत्री कहती है,
that Michael the archangel and the devil were arguing about the body of Moses.
अच्छा, यहूदा की पत्री में लिखा है कि,
is that Jude?
Yeah, it's Jude. 9.
Jude 9.
यहूदा के पत्री उसके नवे पद में लिखा है कि स्वर्ग दूत मिकाएल और मूसा स्वर्गदूत मिकाएल और शैतान ने मूसा के शव के विषय में वादिदात किया.
What was happening there?
क्या हो रहा है वहां पे?
You think about that for a while and you can tell me later.
आप लोग सोचिए इसके बारे में थोड़ी देर, फिर बाद में मुझे बताइएगा आप.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से.
Sanctification has three parts, three stages.
पवित्रीकरण के तीन चरण हैं, तीन हिस्से हैं, तीन खंड हैं.
We have been sanctified.
हमारा पवित्रीकरण हो गया
है. We are being sanctified.
हमारा पवित्रीकरण हो रहा है.
And we shall be sanctified.
और एक दिन हमारा पवित्रीकरण हो जाएगा.
We already have been.
हो चुका है.
Positionally.
स्थान दशा अवस्था.
We are being practically and personally.
हो रहा है व्यवहारिक तौर से, व्यक्तिगत रूप से.
And we shall be finally, fully and completely.
एक दिन हो जाएंगे अंततः संपूर्णता से, पूरी तरह से.
Now can you say the same thing about justification?
क्या जो बात हम पवित्रीकरण के बारे में कह रहे हैं, क्या वही बातें हम धर्मी ठहराए जाने के बारे में कह सकते हैं?
We have been justified.
हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं.
We are being justified.
हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं.
And we one day shall finally be justified.
और एक दिन हम धर्मी ठहरा दिए जाएंगे पूरी तरह से. क्या हम कह सकते हैं अली बात?
You need to understand the distinction.
आपको इन दोनों के बीच में भिन्नता को समझना पड़ेगा.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
The believer is described as being in Christ.
जो विश्वासी है वो यीशु मसीह में है, ये करके वर्णन किया जा रहा है इसका.
Now let's review again quickly what that means.
आइए अब हम लोग पुनरावृत्ति करें और पुनरावलोकन करके देखें क्या मतलब क्या होता है मसीह में होने का.
Before we said the non-Christian is in Adam.
पहले हमने कहा था कि जो गैर विश्वासी वो आदम में है.
And he is in Adam two ways.
और वो आदम में दो तरीके से है.
Legally and physically.
वैधानिक तौर पे और शारीरिक तौर पे.
It means to be united to Adam.
इसका ये मतलब है कि वो आदम से जुड़ा हुआ है.
And Paul said, all in Adam die.
पौलुस कहता है सब लोग जो आदम में थे मर गए.
All that are in Christ shall be made alive.
और सब लोग जो मसीह में हैं वे जीवित किए जाएंगे.
Now one of the main teachings of the New Testament is this wonderful truth of our union with Jesus Christ.
और नए नियम की एक बहुत ही अद्भुत शिक्षाओं में ये है कि हम यीशु मसीह के द्वारा हमारा मिलन जोड़ दिए गए हैं उसके साथ.
Over 150 times it talks about or mentions the believer's union with Jesus Christ.
150 से ज्यादा बार नया नियम वर्णन करता है यीशु मसीह के साथ एक विश्वासी का मिलन होना.
We're united to him and in him like a body to a head.
और हम उससे एक शरीर जैसे सर से जुड़ा रहता है उस तरह से उसी समान हमारा उससे मिलन हो चुका है.
We're united to him like branches to a vine.
और हम जैसे एक ब्रांच एक दाख से जुड़ी दाख लता से जैसे दाख जुड़ी दाख से दाख लता जुड़ी होती वैसे हम भी जुड़े हुए हैं.
We're united to him like a wife to a husband.
जैसे एक पत्नी एक पति से जुड़ी होती लगी होती उसी तरह से हम भी उससे जुड़े हुए हैं.
We're united to him like a building to a foundation.
और जैसे एक भवन एक नींव से जुड़ा होता है उसी तरह से हम भी जुड़े हुए हैं
उससे। In many different ways the Bible says that we are in Christ, united to Christ, and he is in us as well.
और जैसे बाइबल हमको बताती है कि हम हमारा उससे मिलन हो गया है और उसका हमसे मिलन हो गया, अब हम उसमें हैं।
So again, what does it mean to be in Christ?
तो यीशु मसीह में होने का मतलब
it
क्या है?
It means to be in union with Christ.
इसका मतलब यह है कि यीशु से हमारा मिलन हो गया, जोड़ हो गया। यीशु में होने का मतलब क्या है? यीशु से मिलन हो गया, यीशु से जोड़ हो गया है, हम यीशु के साथ हैं।
We were united to the first Adam in two ways.
हम पहले आदम से दो मायनों में जुड़े हुए थे।
And now we're united to the last Adam in two ways.
और अब हम जो आखिरी आदम मतलब यीशु से दो तरीके से जुड़े हुए हैं, मिलन हो चुका
है। We've talked about this before, but it's very important for you to understand.
और हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझना इस बात को।
So that you can clearly teach it to the people of God.
ताकि आप इसको स्पष्टता के साथ परमेश्वर के लोगों को सिखा सकें इस बात को।
So they can understand the great blessing of union with Jesus Christ.
ताकि लोग एक बड़ी आशीष जो यीशु मसीह से मिलन के द्वारा हमें मिलती है उसको समझ सकें।
Because all of the blessings of the Christian life and experience come forth in our union with Jesus Christ.
क्योंकि जो भी हमारी आशीषें हैं, जो भी अभी अनुभव हैं, वो सब हमको यीशु मसीह से मिलन के द्वारा मिलती हैं।
The Bible talks about us being united to Jesus Christ in eternity past.
और बाइबल हमें बताती है कि हम यीशु मसीह से अनंत काल पूर्व में मिल चुके थे, जुड़े हुए थे।
He chose us in union with Christ before the foundation of the world.
इससे पहले कि दुनिया की नींव डाली जाती, सृष्टि होती, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में चुन लिया उससे जुड़े होने के ना कारण।
The Bible says that we were in Christ while he lived upon the earth, he died upon the cross and he rose from the dead.
और बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह के मरने में, मृत्यु में, जी उठने में और गाड़े जाने में, जी उठने में भी हमारा उससे मिलन है और हम उससे जुड़े।
And the Bible also says that when we believe in Christ, we are joined to Jesus Christ.
और बाइबल हमको ये भी बताती है कि हम when we
believed in Christ, we were also joined to Jesus Christ in our own experience.
तो बाइबल हमको ये भी बताती है कि जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, तब हम यीशु मसीह से जुड़ गए अपने स्वयं के अनुभव में भी।
So we were joined to Jesus Christ in eternity.
तो हम यीशु मसीह से अनंत काल पूर्व में, सृष्टि से पहले जुड़े हुए थे।
Joined to Jesus Christ in redemptive history.
और इतिहास में जब यीशु मसीह हमारे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, छुटकारे के इतिहास में भी हम उससे जुड़े हुए हैं।
We're joined to Jesus Christ in our own personal experience.
और हम अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव में भी जब उस पर विश्वास करते तो हम उससे जुड़ जाते हैं।
And we'll be finally and fully joined to Jesus Christ in glory.
और फिर अंत में भविष्य में जब हम महिमान्वित होंगे तब भी हम यीशु मसीह से जुड़े होंगे, हमारा मिलन होगा अंततः पूरी तरह से।
But now we're talking about that third reality of being joined to Christ.
और अब हम तीसरे सत्य के बारे में बात करें, अवस्था के बारे में बात करें, यीशु से मिलन के बारे में।
Right now,
इस समय अभी
experience,
हमारे स्वयं के अनुभव में, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है,
he is joined to Jesus Christ.
परमेश्वर वचन कहता है कि हम यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं, मिला दिए
joined to Jesus Christ in two ways.
हम यीशु मसीह से दो तरीके से जुड़ जाते हैं।
You remember we were joined to Adam in two ways.
याद है कि हम आदम से दो तरीके से मिले हुए थे,
legally and physically.
वैधानिक तौर से और शारीरिक तौर पर।
By legal representation.
वैधानिक प्रतिनिधित्व के द्वारा।
And by physical birth.
और फिर शारीरिक जन्म के द्वारा।
And we're joined to Christ in two ways.
और हम उसी तरह से यीशु मसीह से अपने अभी वर्तमान व्यक्तिगत अनुभव में दो तरीके से जुड़ जाते हैं। याद है आपको हमने पहले कैसे क्या कहा था?
By legal representation,
वैधानिक कानूनी प्रतिनिधित्व के द्वारा, वैधानिक प्रतिनिधित्व के द्वारा।
And not by physical birth, but by spiritual birth.
शारीरिक जन्म के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मिक जन्म के द्वारा हम उससे जुड़ जाते हैं। तो दो तरीके से हम अभी वर्तमान में इस समय अपने अनुभवों में उससे जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह से हमारा मिलन होता है दो तरीकों से। पहली बात, वो हमारा हमारा वैधानिक प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारा वैधानिक प्रतिनिधि है। दूसरी बात, आत्मिक जन्म के द्वारा।
We have a legal relationship with Christ.
हमारे यीशु मसीह से हमारी एक वैधानिक कानूनी संबंध है.
And we have a spiritual relationship with Christ.
और हमारा यीशु मसीह से एक आत्मिक संबंध भी है.
This is by representation.
ये प्रतिनिधित्व के द्वारा
है. This is by regeneration or the new birth.
ये है नए जन्म के द्वारा या नई उत्पत्ति के द्वारा.
This is by imputation or legal transfer.
और ये हमारे वैधानिक हस्तांतरण के द्वारा होता है.
This is by impartation.
ये हमें प्रदान कर देने के द्वारा होता है.
This gives us a new condition or a new, a new position or a new status.
ये हमारे लिए एक नई अवस्था या नई स्थिति लाके खड़ा करती है.
A new legal status.
ये परमेश्वर के सामने एक नई वैधानिक स्थिति खड़ी कर देती है या स्तर लाके खड़ा कर देता है.
This gives us a new condition and a new nature.
लेकिन ये हमको एक नया स्वभाव दे देता है अथवा एक वास्तविक परिस्थिति दे देता है, वास्तविक नई परिस्थिति.
This results in justification.
उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं हम.
This results in sanctification.
इसके द्वारा हम पवित्रीकरण में बढ़ते हैं.
This delivers us from the guilt of sin.
ये हमको पाप के बोध से छुड़ाता है.
This delivers us from the power of sin.
ये हमको पाप की सामर्थ से छुड़ाता है. वहां पे पाप के बोध दोष बोध से छुड़ाता है. दोष नहीं है यहां से, हमें पाप की वास्तविक सामर्थ से छुड़ाता है.
This produces assurance.
उसके द्वारा आश्वासन उत्पन्न होता है. आधे लोग तो खो गए अब.
This produces perseverance.
इसके द्वारा हम लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, बने रहते हैं.
You got two different words for that? Now we've covered this before, but it's very important to know and to remember.
इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत जरूरी है कि हम इसको याद रखें और भूले नहीं.
This results in a saving union with Christ.
तो क्योंकि वो हमारा वैधानिक प्रतिनिधित्व करता है, इसके द्वारा हमारे उद्धार या मुक्ति बचाए जाने का मिलन होता है उससे.
This results in an experiential communion or fellowship with Christ.
लेकिन इसके द्वारा हम वास्तविक अनुभव यीशु मसीह के साथ संगति को हम अनुभव करते हैं.
This is the basis or the grounds of our justification.
वो हमारे धर्मी ठहराए जाने का कारण है या बुनियाद है.
This is the basis and grounds of our sanctification.
किंतु ये हमारे धर्मी ठहराए जाने का पवित्रीकरण का बुनियाद या कारण है.
Now we've looked at this before.
हम पहले भी इसको देख चुके हैं.
We've looked at all the different verses.
और हम अलग अलग पदों को देख चुके हैं.
But it's very important that you understand what comes out of our union with Jesus Christ.
लेकिन जरूरी कि हम समझ जाएं यीशु मसीह से मिलन के द्वारा क्या होता है हमारे अंदर.
We have a new position.
एक नई अवस्था है हमारी.
This is the forgiveness of sin.
ये है पापों की क्षमा.
This is the deliverance from the guilt of sin.
ये है पापों की क्षमा अपराध बोध.
This gives us assurance.
और ये हमको आश्वासन प्रदान करता है.
This delivers us from the power of sin.
किंतु ये हमें पाप की सामर्थ से छुड़ाता है.
And it enables us to persevere.
और ये हमें हमारी सहायता करता है कि हम बने रहें, लगे रहें.
Our legal union with Christ is the source of our justification.
यीशु मसीह से वैधानिक मिलन हमारे धर्मी ठहराए जाने का सूत्र है.
Our spiritual union with Christ is the source of our sanctification.
हमारा आत्मिक मसीह से मिलन हमारे पवित्रीकरण का सूत्र है.
And they're all through union with Jesus Christ.
और ये सारी बातें यीशु मसीह से मिलन के द्वारा ही हमको प्राप्त होती हैं.
Now we looked at many different verses.
हम कई पदों को हम देख चुके हैं इसके बारे में.
Remember what Paul said in 1 Corinthians chapter 1, I believe verse 30.
याद है आपको पहले कुरिन्थियों के 5 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस ने क्या कहा था?
There are many different blessings that flow out of our union with Jesus Christ.
बहुत सारी विभिन्न आशीषें हैं जो यीशु मसीह से मिलन के कारण हमारे पास उपलब्ध होती हैं.
Paul says, chapter 1, verse 30, by his doing you are in Christ Jesus.
पहले कुरिन्थियों के 5 अध्याय उसके 3 पद में 30 पद में एक पौलुस कहता है परंतु उसी के कारण उसके कार्य के कारण तुम मसीह यीशु में हो.
Made for us wisdom from God.
जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान बन गया.
It was a wisdom not that the world understood.
ये ऐसे ज्ञान है जो संसार ने नहीं समझा.
God's wisdom was a slain lamb.
और परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान तो एक मारा हुआ घात किया हुआ मेमना है.
God's wisdom was the cross of Christ.
परमेश्वर की बुद्धि या ज्ञान तो यीशु मसीह का क्रूस था.
World didn't understand that.
संसार ने तो इस बात को नहीं जाना.
But Paul said it is wisdom from God.
पौलुस कहता है कि ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से है.
And it is righteousness and sanctification and redemption.
और वो कहता है कि धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है.
So a legal righteousness.
एक वैधानिक धार्मिकता.
And a practical righteousness.
और एक व्यवहारिक धार्मिकता.
All flow out of our union with Jesus Christ.
और ये सब मसीह यीशु से मिलन के कारण निकलती
है. When a man believes,
जब एक व्यक्ति विश्वास करता है,
God does a miracle in his life and in his heart.
परमेश्वर उसके जीवन में उसके हृदय में एक आश्चर्यकर्म करता है.
He sends his spirit into his heart.
परमेश्वर अपनी आत्मा को उसके हृदय में भेजता है.
By the Holy Spirit, he is savingly united to Jesus Christ.
और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो यीशु मसीह से मिल जाता है.
Christ is in heaven.
और यीशु मसीह स्वर्ग में है.
We're united to him by faith.
हम उससे विश्वास के द्वारा मिलते हैं.
And the righteousness that he earned in his life is immediately imputed or transferred to us.
और जो धार्मिकता उसने कमाई थी इस पृथ्वी पर वो एकदम से तुरंत पलक झपकते ही हमारे खाते में डाल दी जाती है, हमारे लिए हो जाती है.
And also the spirit who raised Jesus from the dead is imparted to us.
और ना ही हमारे खाते में उसकी धार्मिकता डाल दी जाती है, प्रदान कर दी, बता दी जाती है, मान ली जाती है, लेकिन उसकी आत्मा जिसने उसको मृतकों में से जिलाया था वो तुरंत हमको दे दी जाती है.
Now these things, two things are different, but they are inseparable.
ये दोनों बातें भिन्न हैं, किंतु इनको अलग नहीं किया जा सकता है. इन दोनों बातों में भिन्नता अवश्य है, किंतु इन दोनों बातों को अलग नहीं किया जा सकता.
And as we talked about the difference before between justification and sanctification,
और जैसे हमने पहले भी बात किया है धर्मी ठहराए जाने और पवित्रीकरण में भिन्नता को, फर्क को.
Now we're talking about the source of our justification and our sanctification.
अब हम बात कर रहे हैं हमारे सूत्र के बारे में धर्मी ठहराए जाने के लिए और पवित्रीकरण के लिए.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
Sanctification does not come out of justification.
पवित्रीकरण धर्मी ठहराए जाने के से होकर के नहीं निकलती है.
This is a legal act, a legal declaration.
ये एक वैधानिक घोषणा है.
This is actually a spiritual impartation.
लेकिन यह तो पवित्रीकरण तो एक आत्मिक प्रदान करना है, देना है.
Our sanctification comes directly out of our spiritual union with Jesus Christ.
हमारा पवित्रीकरण यीशु मसीह से जो आत्मिक मिलन हुआ है उसका सीधा सीधा नतीजा है, परिणाम है.
And your responsibility is to study these things in the Word of God.
और आपकी जिम्मेदारी कि परमेश्वर के वचन में आप इन बातों को पढ़ें, अध्ययन करें.
And to be able to see them and to be able to understand them from the Word of God.
कि आप इनको देख सके, समझ सके परमेश्वर के वचन में से.
And to be able to clearly teach them to the people of God.
और फिर आप परमेश्वर के लोगों को इस बात को स्पष्टता से सिखा
सके. So they can see it with their own eyes.
ताकि वो अपनी खुद की आंखों से देख सके.
And they can understand this.
वो ये समझ सके इस बात को.
They have a new legal record.
कि उनके पास एक नया वैधानिक अभिलेख है.
And they have a new nature.
और ना सिर्फ एक नया वैधानिक लेख लेकिन नया स्वभाव भी है, मनुष्यत्व भी है.
That's what it means to be united to Jesus Christ.
यही है यीशु मसीह से मिलन का मतलब अर्थ.
Any questions?
कोई प्रश्न?
Now your privilege and responsibility is to study these things and clearly teach them to others.
अब आपकी जिम्मेदारी आपका सौभाग्य यह है कि आप इन बातों को समझें और लोगों को सिखाएं.
You understand what Paul is saying?
आप समझ रहे हैं कि हाँ पौलुस यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है?
It's not enough to write this in your notebook.
काफी नहीं है कि आपने कॉपियों में इसको लिख लें.
You need to write it in your heart.
आपको इसको अपने हृदय में लिखना है.
Now listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
We're talking about sanctification.
हम पवित्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं.
Yesterday we talked about the gospel, true conversion and justification.
कल हमने सुसमाचार, सच्चे हृदय परिवर्तन और धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात
किया. Today we're talking about sanctification and union with Jesus Christ.
आज हम बात कर रहे हैं धर्म पवित्रीकरण के बारे में जो कि यीशु मसीह से मिलन के द्वारा होती है.
Any questions?
कोई प्रश्न?
Is that a comment or a question?
Lunch pe baat karenge hum aram.
Let me ask you this.
Main aapse poochta hu ye.
All blessings flow out of Christ.
Sari aashishe Yeshu Masih mein se nikalti hain.
There is a great and a high blessing that flows out of union with Christ.
यीशु मसीह से मिलन के द्वारा एक बड़ी महान और ऊंची आशीष प्रवाहित होती है.
That is the blessing of adoption.
और वो आशीष है लेपालक पुत्र बनाए जाने की, लेपालकपन की.
Now is adoption a result of our legal union with Christ or our spiritual union with Christ or a result of both our legal and spiritual union with Christ?
अब हम कोई बताइए, हमारा लेपालकपन यीशु मसीह से वैधानिक मिलन के कारण हुआ है या शारीरिक या आत्मिक मिलन के कारण? हाँ जी, बोथ.
Adoption gives us a new position and a new experience.
लेपालकपन हमको एक नई अवस्था या नई स्थिति देता है और साथ ही साथ एक नया अनुभव भी देता है.
We are formally and legally adopted into the family of God.
हम लोग औपचारिक तौर से और वैधानिक तौर से परमेश्वर के परिवार में ले, हमारा हमें गोद ले लिया जाता है.
But Paul says we also have the spirit of adoption placed within us whereby we actually cry out Abba Father.
और पौलुस कहता है कि हमारे भीतर लेपालकपन की आत्मा, हमारे अंदर आत्मा डाल दी जाती है, इसीलिए हम कहने पाते हैं हे अब्बा हे पिता.
And this is one of the great blessings of the child of God.
परमेश्वर के संतान होने की एक सबसे बड़ी आशीष ये है.
It's not enough to know that you are simply forgiven of your sin.
ये जानना सिर्फ काफी नहीं है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं.
You need to know that you are a son and a daughter of the living God.
लेकिन हमें ये जानना तो है कि हम जीवित परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं.
And what are the benefits of adoption?
अच्छा, लेपालकपन के क्या-क्या फायदे हैं?
Remember we said it is union with Christ.
याद है आपको हमने कहा था मसीह से मिलन.
Two ways.
दो तरीके से होता है हमारा मसीह से मिलन.
Legal.
वैधानिक.
And spiritual.
आत्मिक. दो तरीके से मिलन होता है मसीह से, वैधानिक आत्मिक.
This gives us a new position. This gives us a new condition.
और वैधानिक हमारी नई स्थिति या अवस्था को बताता है.
And adoption involves both of these things.
नई वास्तविक परिस्थिति को बताता है. और लेपालकपन में दोनों शामिल हैं, दोनों वैधानिक और आत्मिक मिलन की वजह से हमारा लेपालक, हमें लेपालकपन का दान मिलता है.
God has formally adopted us into his family and he's legally declared us to be his children.
परमेश्वर ने हमको औपचारिक तौर पे अपने परिवार में प्रवेश करा लिया है, लेकिन वैधानिक तौर पर सबके सामने अपना पुत्र या पुत्री होने की घोषणा भी करता है।
He has also put his Holy Spirit within us, a spirit of adoption whereby we cry out, Abba Father.
उसने अपनी आत्मा भी हमारे अंदर डाल दी है, लेपालकपन की आत्मा, तभी तो उसकी वजह से हम अब्बा और हे पिता करके पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं।
Name me at least five blessings or benefits that come from adoption.
मेरे को आप पांच उन आशीषों को बताइए जो कि हमारे पास आते हैं लेपालकपन की वजह से। हाँ, इनहेरिटेंस,
इनहेरिटेंस
पांच, ये तो पहली थी।
Let me ask you this,
Father's love,
the Father's love,
नकल कर रहे भाई तुम?
Is he reading old notes?
That's what I asked him. The discipline of the father.
The what?
Discipline of
the
father.
That's true. Father's discipline.
Holy Spirit. Holy Spirit.
That Holy Spirit. How do we know we have a future inheritance?
हमें कैसे मालूम कि भविष्य में हमें उत्तराधिकार मिलेगा?
We get a down payment now.
क्योंकि हमें अरे आंख शुरू में मिल जाता है कुछ, पहला क्या बयाने में मिल जाता, धन्यवाद, बयाने में पवित्र आत्मा मिल जाता है।
एंड व्हाट इज दैट फर्स्ट पेमेंट और डाउन पेमेंट और दैट प्लेज ऑफ आवर अडॉप्शन,
वो जो पहली किश्त या बयाना क्या है जो हमें लेपालकपन पे मिलता है, क्या है वो पहला बयाना क्या मिलता है हमको? पवित्र आत्मा,
होली स्पिरिट,
पवित्र आत्मा।
What else?
और कौन कौन सी आशीषें हैं? नहीं नहीं, लेपालकपन पुत्र बन जाने से हमें कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं? धर्मी ठहराए जाने की वजह से हमको ये हो रहा है। Part of his family? Part of his family?
Well, we can say that in that we now have immediate access into the presence of our Father.
पिता की उपस्थिति में हमारे पास रास्ता खुल जाता है। पिता की उपस्थिति में जाने के लिए हमारे पास रास्ता खुल जाता है।
Now, in the first century, when a man, when a father adopted a son,
पहली शताब्दी में जब एक पिता अपने किसी बेटे को गोद लेता था,
whether it was his own physical born son or it was not his physically born son,
चाहे वो उसके खुद के शरीर से पैदा हुआ बालक हो या उसके शरीर से ना पैदा हुआ बालक हो,
he put him under a tutor to prepare him for the full benefits of sonship.
और वो क्या करते थे पहले शताब्दी में, क्या करते थे पिता लोग, उस जन को, उस नवजात, उस जवान बालक को एक शिक्षक के अधीन डाल देते थे ताकि वो लेपालकपन के फायदों को पा सके कुछ समय के बाद।
That tutor taught him and led him and prepared him to be a legally adopted son.
और वो शिक्षक उस लड़के को शिक्षा देता था, तैयार करता था, समझाता था, उस कानूनी वैधानिक तौर पे लेपालकपन के लिए तैयार करता था।
And he didn't spend much time with his real father. He spent most of his time with his tutor.
और उस समय जो ये बालक होता था अपने असली पिता के साथ समय नहीं व्यतीत करता था, लेकिन अपने शिक्षक के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था।
But when he came of age, usually sometimes 12, 14 or 16,
और जब वो अपनी उम्र में होता था, कभी कभी शायद 12 या 14 या 16 साल का जब हो जाता था,
he went through a process in which the father legally adopted him.
और फिर उसके पिता एक प्रक्रिया में से होकर के जाते थे जिसमें वैधानिक तौर से फिर से वो अपने बेटे को कानूनी तौर पे अपना बेटा बना लेते थे, गोद ले लेते थे।
And everything in the father's house became his.
और तो जो कुछ भी पिता के घर में होता था वो एकदम से इस लड़के का फिर से पुनः हो जाता
था। And he had consistent immediate access into the presence of his father.
और ना सिर्फ इतना, अब अपने पिता के सामने पहुंच होती थी, कभी वो अपने पिता के पास जा सकता था।
He was no longer under the discipline of a tutor, he was under the discipline and instruction of his father.
और अब अपने शिक्षक के अनुशासन और अपने शिक्षक के शिक्षा के अधीन नहीं रहता था, बल्कि अभी अपने पिता के अनुशासन और पिता की शिक्षा के अधीन आ जाता है।
And that's what God has done for us.
और यही चीज परमेश्वर ने हमारे लिए किया, आपके लिए किया।
Now, most Indian men,
बहुत सारे भारतीय आदमी लोग,
Chinese men,
बहुत सारे चीनी आदमी लोग,
probably didn't have a close relationship with their father.
अपने पिता के साथ उनका बड़ा ही नजदीकी संबंध नहीं था।
Let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता
हूँ। Did your father ever tell you he loved you?
क्या आपके पिता ने कभी आपसे कहा कि वो आपसे प्रेम करते हैं?
Did Did your father ever spend time with you and play with you?
आपके पिताजी ने कभी आपके साथ समय व्यतीत किया और आपके साथ कभी खेले हो?
Did your father ever hug or kiss you?
आपके पिताजी ने कभी आपको गले लगाया या आपको चूमा है?
Many Chinese men and many Indian men did not have a close positive relationship with their father.
अरे भैया सुन लीजिए, बाद में आएगा। अधिकांश भारतीय पिता और अधिकांश चीनी पिता लोगों का अपने बालकों से नजदीकी संबंध नहीं होता है।
But if you are a Christian,
लेकिन अगर आप मसीह हैं,
your father loves you,
आपका पिता आपसे प्रेम करता है,
he has given you his inheritance,
उसने अपने उत्तराधिकार दिया है,
you have immediate access into his presence,
चौथी बात अपने पिता के सामने पहुंच,
and because he loves you, he will discipline you,
क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है इसलिए वो आपको अनुशासित करेगा,
and his discipline involves two things,
और इस अनुशासन में दो चीजें होती हैं,
instruction and correction,
निर्देश और सुधार।
He instructs and directs you in the way that you are to go.
वो आपको निर्देश देगा और सिखाएगा किस रास्ते में जाना है.
And he corrects you and restores you when you have gone out of the way.
वो आपको सुधारेगा और पुनः स्थापित करेगा जब आप रास्ते से गलत भटक जाएंगे.
That is the blessing of adoption.
ये है लेपालकपन की आशीष.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए, चौथी बात
ये है. We are not only pardoned sinners.
हम पाप क्षमा हुए पापी नहीं हैं केवल.
We are not only redeemed servants,
हम केवल छुड़ाए हुए सेवक नहीं हैं.
The greatest blessing and identity of the Christian is as an adopted child of God.
एक मसीही की सबसे बड़ी आशीष या पहचान वो ये है कि हम परमेश्वर के गोद ले हुए संतान हैं.
And your responsibility is to grow in your deeper understanding and experience of that reality.
और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप और भी अधिक गहराई से उस समझ में बढ़ते चले
And to be able to clearly teach it and preach it to others so that people can fully understand their relationship with God as Father.
ताकि आप सफाई से और स्पष्टता के साथ लोगों को प्रचार कर सके, समझा सके, ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर पिता उनका पिता है.
We relate to God no longer as a righteous judge regarding the guilt of our sin.
अब हमारे पाप के अपराध बोध के संबंध में अब हम परमेश्वर से एक धर्मी न्यायाधीश के रूप में संबंध नहीं रखते, वास्ता नहीं रखते.
God as a loving Father who is concerned about our growth into Christ.
लेकिन अब हम परमेश्वर पिता से एक ऐसे पिता के समान वास्ता रखते हैं जो कि हमारी वृद्धि और आत्मिक परिपक्वता की चिंता करता है, उसके लिए सोचता रहता है.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपके पास?
We've talked about just several things this morning.
हम लोग कई बातों के बारे में बात कर चुके हैं आज की सुबह.
We've redefined again sanctification.
हमने पुनः पवित्रीकरण को परिभाषित किया है.
And we've talked about what it means to be united to Jesus Christ.
और हमने बात किया यीशु मसीह से मिले होने का मतलब क्या होता है.
And all of your life you need to study and grow in your experience of these realities.
आपके संपूर्ण जीवन आपको इसको जानना है और इन तथ्यों में बढ़ते रहना है.
Any questions?
कोई प्रश्न आपके सामने? हाँ जी, I said you said there were five blessings, we only gave four.
Well then give me one more.
तो फिर दीजिए ना एक और.
I asked you for five blessings.
मैंने आपसे पूछा था पांच आशीष.
I didn't say I was going to tell you five blessings.
मैंने नहीं कहा था कि मैं आपको बताऊंगा पांच आशीष. बताइए. I will become part of the family of God, which is the church.
Yes. We're part of the family of God.
हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं.
That is, we have other brothers and sisters in Christ.
मतलब ये कि अब हमारे पास अन्य भाई बहन हैं मसीह में.
And this is a great blessing.
और ये एक बड़ी महान आशीष है.
So that is why that you should be joined to the people of God.
इसीलिए आपको परमेश्वर के लोगों से मिला होना चाहिए.
The church is the house of God.
कलीसिया परमेश्वर का घर है.
Not this building.
ये भवन नहीं.
It's not made out of physical stones.
ये
भौतिक शारीरिक पत्थरों से नहीं बना है.
Peter says it's made out of living stones.
पत्रस कहता है कि जीवित पत्थरों से बना है ये घर.
Born again by the Spirit of God.
हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है.
United to Jesus Christ, their living head.
हम मसीह से जुड़े हुए हैं जो कि जीवित सर है हमारा.
And they're united to one another.
और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
Like my finger is united to my hand.
जैसे मेरी उंगलियां मेरे हाथ से जुड़ी
हुई हैं. My hand is united to my arm.
मेरा हाथ मेरे हाथ से जुड़ा हुआ है.
My arm is united to my body.
मेरा हाथ मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है.
My body is united to my head.
मेरा शरीर मेरे सर से जुड़ा हुआ है.
Christ is the head of the body.
मसीह देह का सर है.
We are the members of the body.
हम देह के सदस्य हैं.
We are united to one another.
हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
We are to love one another.
इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करना है.
We are to care for one another.
इसलिए एक दूसरे से चिंता करना है.
We are to pray for one another.
इसलिए
We are to help one another.
इसलिए एक दूसरे से सहायता करनी
है. We are to teach one another.
इसलिए एक दूसरे से सिखाना
है. We are to exhort one another.
इसलिए एक दूसरे को उत्साहित करना
है. We are to have true living fellowship and union with Jesus Christ.
इसलिए हमें वास्तविक जीवित संगति होनी चाहिए यीशु मसीह से मिलन के कारण.
God has not called us to live our Christian life alone.
परमेश्वर ने हमें हमारे मसीह जीवन जीने के लिए अकेले नहीं बुलाया.
Almost all of the commandments in the New Testament are given in a context of a living fellowship.
और ज्यादातर अधिकांश आज्ञाएं जो नए नियम में दी गई हैं वो जीवित कलीसिया संगति सहभागिता परिवार के संदर्भ में दी गई हैं.
And we have the great blessing of being in the family of God.
और इसलिए हमारे पास एक बड़ी आशीष है परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने
के लिए. So many more blessings that flow forth from adoption.
और बहुत सारी अन्य आशीषें हैं जो पालकपन से आती हैं.
But these are some of the main ones.
लेकिन ये हैं कुछ मुख्य आशीषें.
Have you experienced in your own heart and life these realities?
क्या आपने स्वयं के जीवन हृदय में इन वास्तविकताओं को अनुभव किया है?
Do you understand in your own mind these glorious blessings?
क्या आप अपने स्वयं के मस्तिष्क में इन महिमामय आशीषों को समझते हैं?
Can you preach clearly with your own mouth these benefits?
क्या आप अपने स्वयं के मुख से इन फायदों को लोगों के सामने प्रचार कर सकते?
Because many Christians do not understand, nor do they experience God as Father.
क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोग ना ही समझते हैं और ना ही अनुभव करने पाते हैं परमेश्वर को अपने पिता के रूप में.
Your responsibility is to open up all the spiritual blessings that are in Christ Jesus.
और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके सामने वे सारी आशीषों को खोल के रख दें जो उनके पास है यीशु मसीह में होने के कारण.
Like a man opening up a treasure box of very valuable jewels.
और जैसे एक आदमी एक खजाने के तख्ते को खोलता है और उसमें से बहुत ही बहुमूल्य रत्नों को निकाल
and
लेता
he takes
है
one of them out.
और फिर उसमें से एक रत्न को बाहर निकालता
says,
है
look at this.
और फिर वो कहता है इसको
look
देखो
at this.
इसको देखो
look at this.
और इसको देखो
this is for you.
ये तुम्हारे लिए
but that's not all.
लेकिन ये सिर्फ
look
काफी
at
नहीं
this.
है और देखो एक
look
और
at it this way.
और इसको
look
देखो
at it this way.
और इस दिशा से
this
देखो
is yours.
ये तुम्हारे लिए
look at this.
और इसको देखो
look at it like this.
और इसको यहाँ पे देखो
understand what it is.
इसको समझो क्या है ये.
God has given it to you.
परमेश्वर ने तुमको दे दिया.
If you don't understand that
अगर आप इसको नहीं समझेंगे
you have never experienced it
अगर आपने इसको कभी अनुभव नहीं किया
है you keep the treasure box closed
तो फिर आप उस खजाने के डब्बे को बंद करके रखे हुए हैं
and the people will not know the inheritance they have in Jesus Christ
और परमेश्वर के लोग कभी भी नहीं जानेंगे कि यीशु मसीह में उनके पास कौन सा उत्तराधिकार है
all the fullness of the godhead bodily dwells in him
और परमेश्वर की संपूर्णता परिपूर्णता देह में उसमें उपस्थित है
all the treasures of wisdom and knowledge.
और यीशु मसीह में सारे ज्ञान और बुद्धि की के 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 खजाना
That's
है परिपूर्णता
why you need
है.
To live in prayer.
इसीलिए आपको प्रार्थना में जीना है.
You need to live on your knees.
इसीलिए आपको अपने घुटनों में
जीना है. You need to have fellowship with the living God.
इसीलिए आपको एक जीवित परमेश्वर से
संगति होनी चाहिए. That's why you need to grow closer to the Lord Jesus Christ.
इसीलिए आपको यीशु मसीह के नजदीक ही चलना है.
That's why you need more of the power of the Holy Spirit in your life.
इसीलिए आपके पास पवित्र आत्मा की और सामर्थ्य होनी चाहिए.
The blessings of the triune God would be yours.
और फिर उस त्रिएक परमेश्वर की आशीषें आपकी होंगी.
That is what Paul prays in Ephesians 1 and Ephesians 3.
और यही चीज इफिसियों पहले अध्याय में इफिसियों 3 में पौलुस प्रार्थना करता है.
And if you do not know nor have you experienced those blessings, you cannot communicate them to others.
और अगर आप इन आशीषों को नहीं जानते ना ही समझते तो आप दूसरों को ये आशीषें कभी बता नहीं पाएंगे.
Or you can just read your notes and tell it to them, but it has no connection with them.
हो सकता है कि आप अपने जो आपने कॉपी में लिखा उसको पढ़ के लोग बता दें, लेकिन आपसे उसका कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं, कुछ लेना देना नहीं है.
A man speaks out of that which fills his heart.
एक व्यक्ति जो उसके हृदय में भरा हुआ है उसी में से निकल के लोगों के सामने बातचीत करता है.
Remember again what the apostle John said.
और याद रखिए कि प्रेरित यूहन्ना ने क्या कहा था.
What we have seen.
जो हमने देखा
है. What we have heard.
जो हमने सुना
है. What our hands have handled.
जिन चीजों को मेरे हाथों ने छुआ है.
Concerning the word of life.
और उस जीवन के प्रभु के बारे में.
This we proclaim to you.
ये बात हम तुमको बताते हैं.
जी Paul Peter said I was with him on the mountain.
और पौलुस और प्रेरित पत्रस कहते हैं कि हम उसके साथ उस पर्वत पे थे. हमने उसकी आवाज भी सुना.
And I saw his glory.
हमने उसकी महिमा को देखा.
And I proclaim it to you.
और हम उसको तुमको बताते हैं.
But if you've never opened that treasure box,
अगर आपने कभी उस खजाने के डब्बे को नहीं खोला,
you haven't looked and enjoyed the blessings that are in Christ.
अगर आपने यीशु मसीह में जो आशीष है उनको नहीं उनका आनंद उठाया,
you can't give it to others.
तो आप दूसरों को कैसे देने पाएंगे उसको?
Sometimes preachers just give the people rocks.
कभी-कभी प्रचारक लोगों को खाली पत्थर लाके दे देते हैं.
They don't give them real jewel.
वो उनको असली रत्न लाके नहीं देते हैं.
They give them a stale loaf of bread or a stone rather than the living bread of life.
वो उनको सूखे पत्थर या सूखी रोटी डबल रोटी लाके देते हैं बजाय कि जीवन की रोटी उनको ला करके दें या बहुमूल्य रत्न लाके दें.
Your responsibility.
आपकी जिम्मेदारी
is to take people in the scripture face to face with the living God.
कि आप लोगों को पवित्र शास्त्र में लेकर के जाएं और परमेश्वर से उनका सामना कराएं.
Moses went up on the mountain.
मूसा स्वर्ग के ऊपर चला गया.
He had fellowship with God.
उसकी संगति हुई परमेश्वर के
साथ. The glory of God was burned upon his face.
परमेश्वर की महिमा उसके मुख पे थी.
He came down and preached to the people.
और उसने आकर के लोगों को प्रचार किया.
But he put a veil over his face.
और फिर उसने अपने ऊपर एक पर्दा डाला.
Why?
क्यों डाले
पर्दा? Because the glory was fading.
क्योंकि वो महिमा जा रही
But
थी.
But we are ministers of a new covenant.
लेकिन हम नई वाचा के प्रचारक हैं.
Not of the letter that kills,
और उस अक्षर के नहीं जो मारता
है, but of the spirit that gives life.
लेकिन आत्मा का जो जीवन देता है.
And as you go to the mountain,
और जब आप पर्वत पर जाएंगे,
and the place of prayer,
और प्रार्थना के स्थान पर,
and behold as in a mirror of the word the glory of the Lord and the face of Jesus Christ.
और जब आप यीशु मसीह के मुख में परमेश्वर की महिमा को उस शीशे में, अर्थात उस दर्पण में जो परमेश्वर का वचन है,
you,
देखेंगे.
By the Spirit of God are supernaturally transformed into that same image.
तो फिर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आप अलौकिक तरीके से उसी के स्वरूप में बदलते जाएंगे, परिवर्तित होते जाएंगे.
Progressive stage of Christ-like glory to another.
और अंश अंश करके एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आप उसके समान होते चले जाएंगे.
And when you stand before the people,
और जब फिर आप लोगों के सामने खड़े होंगे,
they see and sense the glory of God.
और फिर वो लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और अनुभव करने पाएंगे. और यीशु मसीह की
जीवन,
परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ.
And when you speak to them,
और जब आप उनसे बात करेंगे,
it's not just empty words.
तो वे खाली खोखले शब्द नहीं होंगे.
It is the power of God.
ये परमेश्वर के सामर्थ होगी.
But if you don't live on the mountain,
लेकिन अगर आप पर्वत पर नहीं रहेंगे,
if you don't behold the glory,
अगर आप उसकी महिमा को नहीं देखेंगे,
you will not be transformed.
तो आप बदलेंगे नहीं.
And if you don't enjoy the blessing that are in Christ,
और यीशु मसीह में जो आशीष है, अगर आप उनका आनंद नहीं उठाएंगे,
you cannot tell others.
तो आप उनको नहीं बताने पाएंगे.
You'll be like those professed disciples in Ephesus.
और आप उन शिष्यों के समान होंगे जो अंगीकार तो करते हैं इफिसस के शहर में.
They tried to cast out a demon.
उन्होंने कोशिश किया दुष्ट आत्मा को निकालने की.
And what did they say?
और फिर क्या कहा उन्होंने?
In the name of Jesus that Paul preaches, come out of them.
उन्होंने कहा, यीशु मसीह के नाम से जिनका प्रचार पौलुस करता है, तुम बाहर आ जाओ.
What did the demon say?
उन दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा उनसे?
We know Jesus.
हम यीशु मसीह को जानते हैं.
We know Paul.
हम पौलुस को जानते हैं.
But who are you?
लेकिन तुम कौन हो?
A lot of preachers are like that.
बहुत सारे प्रचारक इस तरह के होते हैं.
They say the words.
वो शब्द कहते हैं.
But they don't have the power.
लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं होती है.
Why?
क्यों?
They're preaching an unfelt, unexperienced Christ.
क्योंकि वो लोग एक ऐसे मसीह का प्रचार कर रहे हैं जिसको उन्होंने अनुभव नहीं किया है, जिसको उन्होंने जाना नहीं है.
Have you seen him?
क्या आपने उसको देखा?
Do you know him?
क्या आप उसको जानते
हैं? Are you walking with him?
क्या आप उसके साथ चल रहे
हैं? Are you living on the mountain?
क्या आप उस पर्वत पे जीते
हैं? If you do that,
अगर आप ऐसा करेंगे,
you will be able to communicate in the power of the Spirit of God, the glory of Christ.
अगर आप ऐसा करने पाएंगे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को लोगों तक बताने पाएंगे, पहुंचाने पाएंगे.
All blessings are in Christ.
सारी आशीषें मसीह में हैं.
The life of Christ,
यीशु मसीह का जीवन,
the death of Christ,
यीशु मसीह की मृत्यु,
the resurrection of Christ,
यीशु मसीह का जी उठना,
and the present exaltation of Christ,
और यीशु मसीह का ऊपर उठाया जाना.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए जरा.
There's a difference between an intellectual understanding of historical facts.
और एक फर्क है, भिन्नता है अपने बुद्धि में, दिमाग में उस ऐतिहासिक तथ्य को जानना, जानकारी रखना,
and an experiential relationship with a living person.
लेकिन एक अनुभव के साथ संबंध एक जीवित व्यक्ति के साथ, उसके बारे में जानना ऐतिहासिक तथ्य के रूप में, और दूसरी बात उसको जानना व्यक्तिगत तौर पे, बहुत फर्क है.
You preach the facts concerning Jesus Christ without the relationship with Jesus Christ, you will be like a Pharisee.
अगर आप यीशु मसीह के बारे में तथ्यों को लोगों के सामने बताएंगे बिना उससे संबंध रखते हुए, तो हम और आप फरीसी के समान होंगे.
Paul said this.
पौलुस ने ये कहा.
We preach Christ.
हम मसीह का प्रचार करते हैं.
And if you know him.
अगर आप उसको जानते हैं.
And if you walk with him.
अगर आप उसके साथ चलते
हैं. And if you have fellowship with
him. अगर आप उसके साथ संगति रखते
हैं. And if you conform to his image.
अगर आप उसके स्वरूप में बनते चले जाते
हैं. When you stand to preach.
तो जब आप खड़े होते प्रचार करने के लिए.
Whether you preach in a quiet voice.
चाहे आप धीरे आवाज में प्रचार करें.
Whether you preach in a loud voice.
चाहे आप जोर से आवाज में प्रचार करते हैं.
However you preach.
जैसे भी आप प्रचार करें.
If you've been with Christ.
अगर आप मसीह के साथ रहे हैं.
People will know it.
लोग जान जाएंगे इस बात को.
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.